पार्टी के खत्म होते ही आरव और माहिरा वापस घर लौट आए थे। कबीर उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। घर आते ही आरव जब सीधे कमरे के अंदर घुसने लगा, तब माहिरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। माहिरा ने इस वक्त काफी ड्रिंक कर रखी थी। माहिरा ने नशीली आवाज में कहा, जरूरी है क्या मुझसे दूर जाना? प्यार तो उसने भी किया और मैंने भी किया, फिर तुम हम दोनों में भेदभाव कैसे कर सकते हो आरव? आरव ने अपना हाथ माहिरा के हाथ से अलग किया और बौहें उठाकर कहा, फर्क अगर तुम्हें समझाने भी लगा तो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम इतने नशे में हो, और होश में होती हो तब तुम कुछ समझना नहीं चाहती। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आयु से प्यार नहीं करता और किसी और लड़की को पसंद करता तो वो मुझे रोक कर रखने के लिए उल्टी सीधी हरकतें नहीं करती। आरव की बात सुनकर माहिरा हंसने लगी, वैसे भी वो नशे में थी। उसने फिर हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा वो लड़की काफी किस्मत वाली है जो तुम उससे इस हद तक प्यार करते हो, या यूं कह सकते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं जो मुझे एक सही लड़की मिली। आरव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, कमियां सबके अंदर होती हैं और उसके अंदर भी है, ये तुम अच्छे से जानते हो। तुमने उसकी कमियों को एक्सेप्ट कर लिया और मेरी एक छोटी सी कमी भी तुम्हारे लिए बड़ी हो जाती है, माहिरा ने उदास होकर कहा, और उसे आरव के करीब आकर उसने आरव की कॉलर पकड़ ली थी। माहिरा आरव के बिल्कुल करीब आ गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? आरव जवाब में सर्द आवाज में बोला, जब तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे तुम्हारा दर्द क्यों महसूस होगा माहिरा लूथरा? तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है, तुम्हें तो एहसास तक नहीं है। तुमने मेरे बेटे को बिना माँ बाप के रहने को मजबूर किया। हम दोनों की मौत को मैं भूल जाता हूँ, लेकिन तुमने हमारी मासूम बच्ची को मारा और आयु के पेट में पल रहे उन दो बच्चों को मारा जिन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी थी, मेरी दादी की जान ली। इन सब लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ठीक है, मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, बदले में मैं तुम्हारे बिना इतने साल रही हूँ, इतने में तो कानून भी माफ़ कर देता है। पूरे 26 साल में तुम्हारे बिना रही थी तो तुम माफ़ नहीं कर सकते क्या? माहिरा ने नम आँखों से कहा। आरव ने माहिरा को खुद से दूर धकेल दिया था। माहिरा इस वक्त नशे में लड़खड़ाकर काउच पर पड़ी हुई थी। आरव ने तेज और सख्त आवाज में कहा, नहीं माफ़ कर सकता हूँ, पिछले जन्म की बातें पिछले जन्म में छोड़ देता, लेकिन इस जन्म में तुमने सारी हदें पार कर दी। मुझे अपने पास बुलाने के लिए मेरे डैड को सहारा बनाया, तुमसे बहस करना बेकार है। उम्र भर अपने पास भी रखोगी तब भी तुमने मेरे जिस भी अपने को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा, ना ही तुमसे प्यार करूंगा। इतना कहने के बाद आरव माहिरा को वहीं पर छोड़कर ऊपर जाने लगा। वहीं सीढ़ियों पर खड़ा कबीर उनकी इस बहस को सुन रहा था। आरव को देखते ही वो उसके पीछे उसके कमरे में गया। अंदर आते ही कबीर ने सीधे सीधे आरव से पूछा, कोई सोल्यूशन निकला? मैंने पता किया था, पार्टी में फैज़ खान भी आया था, वो आयु को प्रोटेक्ट करना चाहता है, हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, पर इस बार उसे मास्टर चिप चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो कि मास्टर चिप अगर किसी के हाथ लगी तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है, आरव ने बताया। फिलहाल हमारे लिए चिप से ज्यादा जरूरी माहिरा लूथरा की बर्बादी है, पिछली बार भी हमने उसका यूज किया था तो इस बार हम इतना क्यों सोच रहे हैं, कबीर ने आरव को सुझाव देते हुए कहा। कबीर का कहना भी सही था। आरव ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो चिप हमारे पास मौजूद नहीं है। हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लिए ये काम कोई और कर सकता है, इस बार जब आयु मिलने के लिए आएगी तब उसे बात करते हैं, कबीर ने कहा। आरव ने उसकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताई। थोड़ी देर और बातें करने के बाद कबीर अपने कमरे में चला गया तो आरव भी सोने जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सुबह के करीब आयु की नींद टूटी तो उसके सिर पर बैंडेज लगा हुआ था और हाथ में भी हल्की चोट आने की वजह से बैंडेज थी। आयु ने इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसे याद आ चुका था कि कल रात क्या हुआ था। मैं रात को घर नहीं पहुंची, मॉम डैड परेशान हो गए होंगे, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहिए, आयु ने हल्के परेशान स्वर में कहा। आयु उठकर बाहर जाने लगी तभी उसे निशान दिखाई दिया। आयु को देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो जल्दी से बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया है, मैं पूरी रात से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। आयु ने निशांत की तरफ देखा भी नहीं और बेपरवाही से बोली, तुम्हें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, हॉस्पिटल स्टाफ मुझे जानता है और अक्सर किसी भी छोटी सी चोट के बाद में बॉडी खुद से हील कर सके इसलिए नींद की माइनर दवाइयां दी जाती हैं। निशांत ने हल्का मुस्कुराकर कहा, स्मार्ट हो, भूल गया था तुम भी डॉक्टर हो। बोलते हुए निशांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, बाय द वे आई एम निशांत मेहरा, कल रात मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। ओह थैंक यू सो मच, आयु ने निशांत की तरफ देखकर कहा और फिर वहां से बाहर जाने लगी। निशांत जल्दी से दौड़कर उसके पीछे गया और आयु के साथ चलते हुए पूछा, डॉक्टर तुम्हारा नाम क्या है? आई मीन मैं अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम्हें बचाने के लिए आया, बदले में एक थैंक्स गिविंग डिनर तो बनता है। आयु ने चलते हुए कहा, हाँ वक्त ही ऐसा आ गया है कि लोगों को किसी भी भलाई करने के लिए बदले में थैंक्सगिविंग पार्टी देनी पड़ती है। खैर फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, अपना एड्रेस दे दो, खाना भिजवा दूंगी, मुझे अननोन लोगों के साथ डिनर करने का कोई शौक नहीं है। आयु की बात सुनकर निशांत वहीं पर रुक गया, जबकि आयु रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगी। आयु के इतने रूखे तरीके से बात करने के बावजूद निशांत को जरा भी बुरा नहीं लगा, उल्टा उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और उसके गाल लाल हो रहे थे।
मुझे ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो लड़कों को आसानी से भाव नहीं देती। मुझे भाव नहीं दे रही तो किसी को भी नहीं दिया होगा। नाम तक नहीं बताया। कोई बात नहीं, तुम तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, निशांत ने खोए हुए अंदाज में कहा। फिर उसने रिसेप्शन डेस्क की तरफ देखा तो आयु वहां से जा चुकी थी। आयु की खुराना फैमिली के साथ कितनी भी बहस क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उनकी बहुत परवाह करती थी। आखिर आरव ने उनकी जिम्मेदारी जो से सौंपी थी। आयु ने अपने लिए कैब ली और तुरंत खुराना मैंशन जाने लगी। निशांत आयु के पीछे आया तो था, लेकिन तब तक आयु टैक्सी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। कोई बात नहीं, निशांत मेहरा के लिए किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, निशांत खुद में मुस्कुराकर बोला और हॉस्पिटल के अंदर जाकर आयु का नाम पता पूछने लगा। वहीं दूसरी तरफ आयु जल्द ही खुराना मैंशन पहुंच चुकी थी। वहां प्रिया और युवराज उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि आयु घर नहीं लौटी थी। उसके सारे फ्रेंड से बात करने के बाद अब आर्या ने पुलिस स्टेशन जाने का डिसीजन दिया था। आर्या ने युवराज और प्रिया से कहा, आई होप मेरी मॉम ठीक हो, उन पर आपका भी हक बनता है, पर अगर वो मिल जाए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज उन्हें फोर्स मत कीजिएगा। प्रिया ने उसकी बात पर सिर हिलाकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आयु के लिए सब कुछ काफी मुश्किल रहा होगा और हम उसकी मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। आप समझ गए, वही काफी है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पीछे से मॉम यहाँ आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, आर्या ने जवाब दिया।
जैसे ही वो जाने के लिए दूसरी तरफ पलटा तो उसके सामने आयु खड़ी थी। उसके हाथ और माथे पर पट्टी लगी हुई देखकर आर्या घबराकर जल्दी से उसके पास दौड़कर गया। युवराज और प्रिया के चेहरे पर भी घबराहट के भाव थे और वो भी आयु की तरह बढ़ रहे थे। आर्या कोई सवाल जवाब करता या वो सब परेशान होते, उससे पहले ही आयु ने उनके दिल में उठ रहे सवालों के जवाब देते हुए कहा, कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाइए, मैंने भी इतना माइंड नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने मेरे भले के लिए सोचा होगा। अब प्लीज़ आप लोग इतना परेशान मत होइए, एक छोटा सा एक्सीडेंट था और एक लड़के ने मेरी हेल्प कर दी थी। आपके हाथ और सर पर चोट लगी है और आप इसे एक छोटा सा एक्सीडेंट कह रही हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज के बाद आप अकेली कहीं नहीं जाएंगे, मतलब कहीं भी नहीं, फिर चाहे आप गुस्से में हों या अच्छे मूड में, आर्या ने हल्के गुस्से में कहा। आयु उस वक्त आर्या से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी बात पर हामी भरते हुए सिर हिला दिया था। उसके बाद आर्या ने प्रिया की तरफ देखकर कहा, आंटी आप सूप लेकर आइए, मैं मॉम को रूम में लेकर जाता हूँ और उनके इनिशियल ट्रीटमेंट करता हूँ, मुझे उन पर यकीन नहीं है। युवराज और आर्या आयु को कमरे में लेकर गए तो वहीं प्रिया आर्या के बताए हुए काम पर लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के लगभग 10 बजे के करीब माहिरा की नींद टूटी। इस वक्त उसका सिर दर्द से फट रहा था क्योंकि कल रात को उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। कल रात की बातें माहिरा के दिमाग में गूंज रही थी। भले ही वो उस वक्त नशे में हो, लेकिन आरव की कही एक एक बात उसे अच्छे से याद थी और इस वक्त माहिरा के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। वो लड़की तुम्हारा प्यार और घमंड है ना, दोनों को एक साथ तोड़ूंगी, फिर तुम अपने आप लाइन पर आ जाओगे आरव खुराना। अब मुझे किसी भी डील या कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, मुझे उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकालना है, तो वो मैं निकाल कर ही रहूंगी। लगता है एक बार फिर से उसका दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया है, माहिरा ने खुद से कहा और फिर निशांत को कॉल किया। वो जानती थी कि निशांत इस वक्त इंडिया अपनी फैमिली के पास गया हुआ है। निशांत सिर्फ 2 दिनों के लिए गया था और 2 दिन पूरे हो चुके थे। जब माहिरा का कॉल आया तो वो समझ चुका था माहिरा ने कॉल क्यों किया होगा। उसने कॉल रिसीव करते ही तुरंत कहा, सॉरी माही, लेकिन मुझे आने में टाइम लगेगा। जितना टाइम लेना है ले सकते हो, पर आरव खुराना की डियर वाइफ को ठिकाने लगाए बिना यहाँ कदम भी मत रखना। एड्रेस भेज रही हूँ, वहीं पर मिलेगी वो, और मुझे उसकी मौत की खबर ही चाहिए, माहिरा ने निशांत को ऑर्डर दिया। माहिरा का ऑर्डर सुनने के बाद निशांत के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने कहा, चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें समझ तो आया कि मुसीबत को आंखों के सामने हटाने से मुसीबत खत्म नहीं होती, उसे जड़ से मिटाना पड़ता है। डोंट वरी, अब जब उसकी मौत की खबर देनी होगी तभी कॉल करूंगा। माहिरा ने अपनी औकात दिखा ही दी, यही होना था। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।